ये जाति और संप्रदाय किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया कि मनुराम ने बनाया? मनीराम ने बनाया। ये मेरी पत्नी है, ये मनीराम। पत्नी तो बाहर है, पत्नी का शरीर स्त्री तो बाहर है, लेकिन बाहर की इतनी स्त्री दुख नहीं देती है। जब मन में विकार होता है तो दुख होता है, मन में राग होता है तो संबंध होता है, तब वो अपनी पत्नी होती है। थी तो किसी की लड़की, लेकिन मन में संबंध हो गया कि अब वो गिर पड़ी तो मुझे जालत ही करे देखो खाते ही। 10 मिनट पहले गिर पड़ती, 10 मिनट पहले कोई उसको करता तो तुम्हें दुख नहीं होता, लेकिन जब ए हो गया मनीराम में कि मारा मीरा ना करियो, अबे ना जीव तो ना छोड़ू। जय श्री राम। तो पत्नी भी मन में है तो पता भी मन। पता समझ गए? पतना पत्नी भी मन में, पतना भी मन में, पुत्र भी मन में, मित्र भी मन में, शत्रु भी मन में, दुकान भी मन में, जीव भी मन में और ईश्वर भी मन में। ईश्वर भी तुम्हारे मन में ही है मेरा ये ईश्वर। इसीलिए ईसाई को ईसाई ईश्वर दिखेंगे, उसको झूलेलाल के दर्शन नहीं होंगे। तो सिंधी को झूलेलाल ही दिखेंगे, क्योंकि मन में घुसा है कि झूलेलाल पहले भगवान आए, उसको वही दिखेगा। और वागरी को कारी देवी और सिंधी माता दिखेगी, उसको न कृष्ण मिलेगा न शिव मिलेगा न आसाराम बापू दिखेगा, उसको तो कारी देवी आई थी, जोगणिया वाली आई थी। तुम जैसा जैसा मन में वातावरण, दूसरों के मन, अनंत मनों से तुम्हारे मन में जो संस्कार पड़ गए हैं वही तुम्हारे भगवान हो गए। संप्रदाय वाले बोलते हैं ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहं सतनाम, ऐसा जपो, जपते जपते फिर यहाँ प्रकाश होगा, फिर भंवर गुफा है, वहां से भंवर गुफा से ऊपर जाओगे तो ईश्वर मिलेगा। तो भैया ईश्वर सर्वव्यापक है, भंवर गुफा तो क्या एक नाड़ी है, और जबते जबते तुम्हारा कॉन्शियंस इधर उधर से हट जाएगा तो नाड़ी में जो तुम्हारी एकाग्रता का फोर्स लगेगा तो थोड़ा प्रकाश दिखेगा। लेकिन प्रकाश दिखा ना, वो दिखेगा भी तो मन को, नाड़ियों में कई रसायन है, तो कभी प्रकाश दिखेगा, कभी हरा प्रकाश दिखेगा, कभी कोई दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, लेकिन ये सब दृश्य है। दृश्य के पीछे कब तक भागोगे? उनका कहना है कि ऐसा जपोगे तो 3 जन्म के बाद मुक्ति होगी। राम तीर्थ बोलते मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे ने अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। जो इस जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में कहाँ होगा, जो अभी नहीं तो फिर कब होगा, जो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ होगा। उसलिए वेद कहता है कि उत्तिष्ठ जाग्रत तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि सहित जाकर बुद्ध पुरुषों के चरणों में प्रणिपात होकर परिप्रश्न करो, विचार करो कि तुम कौन हो, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन किसको होता है, मुक्ति किसकी होती है। कृष्ण ने कह दिया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन में अथाह शक्ति है, मन एकाग्र हो जाए और जैसा दृढ़ निश्चय करे ऐसा वहां, क्योंकि अथाह शक्ति कहां से लाए कि मन और परमात्मा जैसे सरोवर और तरंग, सरोवर और तरंग, बैटरी और उसका प्रकाश, सूर्य और उसके किरण, ऐसे ही परमात्मा और मन, हमारे और परमात्मा के बीच की जो सेतु है, जो रेखा है, उसका नाम है मन। तो जब संसार का चिंतन करता है तो वही मन कर्ता भोक्ता सुखी दुखी और संसारी हो जाता है, और यदि अपनी असलियत का चिंतन करता है तो वही मन परब्रह्म रूप हो जाता है। चित चेतन को ध्यावे तो चेतन रूप भयो है, चित नारी को ध्यावे तो नारी रूप भयो है। रात को स्त्री बन जाता है और अजी इधर आओ ना, दूर हटो। अब तुम्हारा ही चित्त एक जगह स्त्री बन जाता है और दूसरी जगह पति बन जाता है, तीसरी जगह पुत्री बन जाता है, चौथी जगह पुत्र बन जाता है। बताओ तुम्हारा चित्त ही तो खेल कर लेता है, सत्ता आत्मा की है। यहाँ भी तुम्हारे चित्त के ही तो संबंध है कि ये गुरु है, ये शिष्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मोटेरा है। मोटेरा को पता थोड़े कि मैं मोटेरा हूँ, साबरमती को पता थोड़े मैं साबरमती हूँ, भारत को पता थोड़े मैं भारत हूँ, पाकिस्तान को पता थोड़े मैं पाकिस्तान हूँ, महाराष्ट्र को पता थोड़े मैं महाराष्ट्र हूँ। नहीं, लोगों के मन में रेखा खिंच गई, हमची मुंबई तुम चा गुजरात, इकड़म तिकड़म काय न चलाए चा, हरिओम हरिओम सांगा, विठोबा विठोबा सांगा, ये मन में। तो किसी का इष्ट विठोबा है, तो किसी का इष्ट झूलेलाल है, तो किसी का इष्ट ये है। तो जैसा जैसा वातावरण हुआ, जैसे जैसे शक्तिशाली पुरुष हुए, उस समय उन उनके प्रति जो समाज आकर्षित हुआ, वही समाज अपने पुत्रों और परिवारों को वही देवी देवता और पूजा की सामग्री देता गया, और उसी में वे लोग घूमते रहे। श्री राम। वेदांत कहता है कि त्रिलोकी हटानी होगी। जगत को हटाने के लिए देवी देवता को मानो, लेकिन आगे तो देवी देवता भी तुम्हारे ऊपर तुमको दबाए रखेंगे। इसलिए वेदांत बोलता है उनको भी फिर बोलो। वेदांत इतना महान संदेश देता है महाराज। एक असील ने वकील के पास जाकर अपना प्रॉब्लम सुनाया। वकील ने कहा कि तुम्हारा केस जीतना मुश्किल है, एक ही उपाय है, तुम गूंगे बन जाओ तो जीत जाओगे। मैजिस्ट्रेट जो पूछे, विरोधी जो पूछे, तुम कह देना ड्रे ड्रे ड्रे, जो भी पूछे तुम ड्रे कहना, ट्रे बे और कुछ मत कहना, केवल ड्रे याद रखना। कि तुमने इससे पैसे लिए थे, बोले ड्रे। ये साक्षी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बोले ड्रे। तुमने रुपए काम में लगाए थे, बोले ड्रे। जो भी पूछे महाराज, एक सुनवाई दो चार पांच पड़ी, जज ने कहा कि ड्रेन दे, ये आदमी को केस खारिज कर दिया। वकील ने कहा देखो केस जीत के दिया, फी लाओ। तो बोलता ड्रे। वकील को भी कहता है ड्रे। ऐसे ही वेदांत कहता है कि पहले तो जगत को तुम ड्रे करो, देवताओं की बात मानो, अंत में देवताओं को भी बोलो दे, तुम एकदम छूट जाओ यार। और देवताओं को ही दे नहीं, देवता तो क्या है कि मशीर लोग हैं। अंत में हम जो वकील हैं तुमको छुड़ाने वाले, हमको भी छोड़ दो। वेद बोलता है, ईश्वर बोलते, भगवान बोलते कि मेरे इस रूप को क्या देखता, तू अपने को देख। गुरु भी जब बहुत कृपा करेगा कि ए शरीर को क्या याद रखता है, मेरे को इसको क्या याद रखता है, जो मैं कहता हूं याद कर, तू और मैं एक ही हूं। उड़िया बाबा बढ़िया संत हो गए। शरीर चाहे बढ़िया संत का हो, चाहे घटिया संत का हो, चाहे असंत का हो, फरा सो जरा, आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे कृष्ण चाहे बुद्ध चाहे राम चाहे रहीम हो। शरीर तो सबका नश्वर है। ये जो हम लोग इतने बैठे हैं, आने वाले 60 साल में ये सब राख के रूप में बदले हुए होंगे। कोई आज बदले, कोई 15 दिन के बाद, 15 महीने के बाद, 15 साल के बाद, सब राख हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? जिसको मैं मानते हूं, ये सब राख का ढेरा मनुष्य होकर गिलगिला रहा है। श्री राम। उड़िया बाबा चल दिए। संसारी आदमी मरता है तो उसकी जैसी मान्यता होती है, जैसी वासना होती है, ऐसा उसकी यात्रा होती है। लेकिन फकीर सतपुरुष जब मरता है, संसारी में बाल बच्चे वाले को मैं संसारी नहीं कहता हूं, जो सरकने वाली चीजों में सतबुद्धि करके जीता है वो संसारी है। संसरति इति संसार। जो सरकने वाली मिटने वाली चीजों में जो सत्यबुद्धि कर बैठा है, वो चाहे सन्यासी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे अवेशधारी हो, वो सब संसारी है। और जिसने असरक तत्वों में दृष्टि डाली है, वो चाहे एक बच्चे का बाप हो, सौ बच्चे का बाप हो, वशिष्ठ जैसा, उसको हम संसारी नहीं कहेंगे, उसको हम संत कहते हैं। श्री राम। जो सरकने वाली चीज में सत्य बुद्धि रखकर सत्य को खो बैठा है, उसका नाम संसारी है। तो उड़िया बाबा संसारी नहीं थे, वो तो फकीर थे। तो चल बस, उनका प्यारा शिष्य जो था पलटू, खूब रोता था, नींद नहीं आए। और वो तो शिष्य से गुजरती है कि जिस गुरु से प्यार मिला है, उपदेश मिला है, तत्वज्ञानी गुरु का तो और गहरा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत गहरे जीते हैं तो उनकी हर अदा बड़ा गहरा असर करती है। श्री राम। पलटू के लिए सारा संसार मर गया। पलटू बस दिन को भी रोए, रात को भी रोए, सुबह को भी रोए, शाम को भी रोए, खाते खाते रोए, पीते पीते रोए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य चैतन्य मर गए, चल दिए,
तो उनके शिष्य कोई कूद के मरा, कोई कैसे मरा, धड़ाधड़ सब मरने लगे, गुरु के बिना नहीं जी पाए। तत्व ज्ञान होता तो कुछ और बात होती, लेकिन गुरु के शरीर में ही प्रीति और गुरु के हाव भाव में प्रीति थी। गुरु तत्व को जानते तो ऐसा तकलीफ नहीं होती। श्री राम महाराज पलटू रोता था, रोते रहते उसके कई दिन बीत गए। एक दिन रात्रि को उसे स्वप्न आया, उड़िया बाबा कह रहे कि पलटू 12 वर्ष तू मेरे साथ रहा और दिन रात मैं कहता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, जन्मने वाला नहीं, और तू भी मरने जन्मने वाला नहीं। पागल, तू मेरे को मरा समझकर, मुझ व्यापक चैतन्य को मरने वाला समझकर मेरे लिए रो रहा है। पलटू तू पलट, इस बात के लिए रो, तुम मेरे साथ होते हुए भी अज्ञानी रह गया, पलट। महाराज सपने में भी उपदेश हो गया और पलटू पलट। अब बात आती है कि उड़िया बाबा चल दिए और ब्रह्म में लीन हो गए तो उपदेश देने को कैसे आए, जरा विचार करना पड़ेगा श्री राम। और यदि उपदेश देने को आए तो वो मुक्त कैसे, उड़िया बाबा तो नहीं आए, लेकिन तुमने जो सुन रखे हैं गुरु के वचन वो गहरे मन में असर कर गए हैं और गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है तो श्रद्धा के कारण तुम्हारे पुण्य बढ़ गए, सत्वगुण बढ़ गया, तो सत्वगुणी माया जो है, सत्वगुणी माया बंधनों से मुक्त करने की प्रेरणा देकर तुम्हारा मन ही गुरु की आकृति लेकर तुम्हें उपदेश देता है। मलिन संवित को शुद्ध संवित उपदेश देकर उसकी मलिनता दूर कर लेती है। श्री राम। जो लोग बोलते हैं हमको ईसा के दर्शन हुए, हमको मूसा के दर्शन हुए, हमको अल्लाह मियां के दर्शन हुए, हमको नानक के हुए, हमको कृष्ण के हुए, हमको इसके दर्शन हुए, तो ये अंतर्यामी चेतन परमात्मा जानता है कि तुम किसको प्रेम से याद करते हो, वो वही रूप धार के तुमको उपदेश देके तुम्हारा काम बनवा लेता है। श्री राम। ये बातें जब ज्ञान में नहीं आती, नहीं समझ में आती, तो हम समझते कि हमारा कोई ऊपर नियंता है, हमारा कोई ऊपर बैठा बैठा चित्रगुप्त लेखा लिख रहा है, फिर क्या होगा, क्या पता क्या होगा। इसी धारणाओं से ऐसी परतें हम बना लेते हैं और मरने के समय डरते हैं कि कोई होगा कोई होगा, तो फिर जाओ फिर कोई होगा तो हो ही जाता है तुम्हारी कल्पनाओं में। आकाश में बैठकर कोई तुम्हारे लिए, तुमने देखा होगा एक बार तो आसुमल ने भी देखा था पिक्चर सती अनुष्या, कोई ले गए थे तो उसमें चित्रगुप्त लेखा लिख रहा था, मोर पीछे से बस खड़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं सबके लेखे। शास्त्र कहते हैं कि चित्रगुप्त साहब तुम्हारा लेखा रखता है, बात तो सच्ची है, लेकिन वो कोई बंदी और कोई मोर के पीछे से एक एक आदमी का लेखा, करोड़ों आदमी एक एक मिनट में न जाने क्या क्या करते हैं, सबका कैसे लेखा होगा बंदियों में। फिर भी बात सच्ची है कि चित्रगुप्त गुप्त रीत से तुम्हारे चेतन में वो संस्कार पड़ जाते हैं, गुप्त रीत से तुम्हारा अंतर्यामी तुम्हारे संस्कारों को देख लेता है, तुम्हारे संस्कार पड़ जाते हैं। तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाकर कुछ करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बिना संस्कार की अवस्था नहीं आएगी, कोई न कोई परतें पड़ जाएगी, या तो परतें हटाने की परत आएगी, या तो परतें बढ़ाने की परत आएगी, या तो श्वेत परत आएगी, या तो काली आएगी, या तो हरी आएगी, परतें पड़ती जाएगी, परतें बदलती जाएगी। दो शिष्यों ने एक समझू फकीर के चरणों में जाकर सिर झुकाया कि गुरु बाबा नाम दान दो। गुरु जी ने कहा कि सेवा करो, ये दो कबूतर हैं, कोई न देखे ऐसी जगह पर इनकी मुंडी मचल के आ जाओ, और जो जल्दी आएगा उसको जल्दी नामदान मिलेगा, और जो आज्ञा का पालन करना होगा, कोई न देखे और इनकी मुंडी मर गया। एक गया जाड़ी बुद्धि वाला, इधर उधर देखा कोई नहीं देखता है, मार के आ गया। दूसरा गया गांव से बाहर, फिर देखा कि वो पेड़ों पे पक्षी हैं वो देख रहे हैं, और जंगल में गया, जंगल पार करके गया, पक्षी नहीं पशु नहीं, इधर उधर देखा, अब देखा कि यहाँ कोई नहीं, सांझ हो गई है। जो मुंडी मचलने की कोशिश की तो देखा कि ये गुरु ने कहा कोई न देखे, ये तो मेरे को देख रहा है, तो मैं आगे रहा। गुरु जी मैं आपके आज्ञा का पूरा पालन नहीं कर सकता हूँ, आपने कहा कोई न देखे, गुरु जी कोई न देखे ऐसी जगह मैंने खूब ढूंढी लेकिन कोई मिली नहीं, कोई न देखे ऐसी जगह पर भी कोई देखने वाला बैठा है, कोई न देखे ऐसी जगह पर भी कोई देखने वाला बैठ गया, इसी का नाम अंतर्यामी है, इसी का नाम चित्रगुप्त है।
कोई ऊपर बैठा हुआ चित्रगुप्त नहीं। इसलिए तुम क्या करते हो कोई न देखे, क्या सोचते हो कोई न समझे, फिर भी कोई समझ रहा है। इसलिए अपने आप ऊपर कृपा करके किसी का अवगुण मत देखना, किसी का बुरा मत सोचना और किसी पर ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या और बुरा सोचने से उसका तो जब होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण बोझिला हो जाता है, तुम्हारे अंतःकरण में मलिनता बढ़ जाती है, तो ये परतें और मैली मैली पड़ जाती है। मैली चादर ओढ़ के द्वार कैसे तुम्हारे आऊं, ऐसा भजन लोग गाते हैं। तो ये मैली चादर क्या के संस्कारों की परतें। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जगत को तिनखे को हटाने के लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है, तो इतनी बड़ी परतें खोपड़ी में है जन्मों की, उसको हटाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। तो अभ्यास बैठकर तुम हिमालय में करोगे ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि तुम बड़े चतुर आदमी हो। तुम हिमालय चल जाओ तो घर का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, जगत रंडा ही जैसे। इसलिए हिमालय में जाकर तुम विचार न करो कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर तुम विचार न करो कोई बात नहीं, यहाँ आकर तुम विचार न करो कोई बात नहीं, तुम चलते चलते कदम उठाते ना तो विचार करो कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कदम उठ रहे हैं, इसमें प्राण शक्ति काम कर रही है और मन उसको सत्ता दे रहा है, और मन को सत्ता देने वाला मेरा चेतन है, चेतन की सत्ता से शरीर चल रहा है, मेरा चेतन आत्मा देख रहा है। इतना तो तुम अभ्यास कर सकते हो ना। तुम बस में चढ़ते हो, एक पैर नीचे और दूसरा पैर बस में है, तो एक पग नीचे ने एक पग ऊंचू, ए जुए से नीचे ऊंचू कौन जुए छे के मनु भाई, पर छे बधु आकाश में हरी ओम तत्सत, बे जन बस में कौन नाक कयो कापो पाड़े छे, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। तुम भोजन चबा रहे हो, चबा चबा के खाना, जल्दी खाओगे तो गुस्सेबाज हो जाओगे, चबा चबा के जो नहीं खाता वो अवश्य गुस्सेबाज होगा ही, और जो जिसका काम दबता है वो क्रोध में आ जाता है, काम दब जाएगा तो क्रोध में आएगा, काम राम में बदलना चाहिए, दबना नहीं राम में बदलना चाहिए। भोजन चबा चबा के खाओ, लेकिन भोजन चबाने से कोई परतें नहीं हटेगी, भोजन चबाने से कोई प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन चबाने से तुम्हारा मन जरा थोड़ा ठीक रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हल्का भोजन खाने से शरीर में स्थूलता कम होती है, मन भी सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मन प्रसन्नता का द्योतक है, स्थूल मन आलस्य निद्रा का द्योतक है। खैर, तो चलते फिरते उठते बैठते ये किसने किया, सुख हुआ तो सोचो किसको हुआ, अहंकार ही प्रसन्न हो रहा है। दुख हुआ तो किसको हुआ कि तुम्हारी मान्यताओं को, सुख हुआ तो किसको हुआ कि मान्यताओं को, अब मान्यताओं को सुख हुआ और दुख हुआ, मान्यताएं जगत के विचारों से मनी बनी है, अब जगत के विचारों में सुख और दुख आए, कहीं सुख आए कहीं गए, आखिर ये भी चला जाएगा। तो सुख में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, दुख में तुम्हारे को द्वेष नहीं होगा, तुम समता के स्टेज पर आ जाओगे। जब समता के स्टेज पे आओगे तो ब्रह्म और तुम्हारे में दूरी नहीं होगी। समत्वम योगम उच्यते। हजार वर्ष का भूखा मरना, लाख वर्ष का नंगे पैर चलना, करोड़ वर्ष का उबाल के पानी पीने का फल इतना नहीं होगा जितना तुम्हारा एक क्षण का समता का जीवन मूल्यवान होगा। श्री कृष्ण के जीवन में पूरी समता टपकती है। भीख मांग कर खाना पड़ा 3 महीने, नंगे पैर घूमना पड़ा, श्री कृष्ण को अज्ञात रहना पड़ा, फिर भी चेहरे पे कोई दुख नहीं, क्योंकि सब बीत जाएगा, सब गुजर जाएगा, सब माया में हो रहा है। और लोग जय जयकार कर रहे हैं, गोपियां मक्खन लेके पीछे घूम रही तो भी कोई अभिमान नहीं, और मामा के वहां मुसीबत तैयार है तो भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि मरेगा ऐसी कोई चीज ही नहीं उनके पास। सारे दुनिया के लोग विरोध करें, तुम्हारे शरीर का कीमा बना दे टुकड़ा टुकड़ा करके, फिर भी तुम्हारा कुछ घटता नहीं, और सारे दुनिया के लोग और 33 करोड़ देवता मिलकर तुमको सर्वस्व दे डाले, फिर भी तुम बढ़ते नहीं, तुम ऐसे हो। श्री राम, जिन लोगों को कुछ मिलता है और अपने को बड़ा मानते हैं और कुछ हटता है तो अपने को छोटा मानते हैं, वो तो रेशमी कपड़े जैसे हैं, अथवा तो भोजू के बेटे जैसे हैं, अथवा तो लालिया मोतिया और कालिया के पड़ोसी हैं। जरा सा जलेबी मिली तो दे पूंछ हलाएंगे, उसकी पूंछड़ी की जलेबी बना के हलाएंगे, और जरा सा डंडा देखा तो दे टांटिया नहीं बच्चे सीधी दौड़ते जैसे। इतना तो लालिया कालिया और मोतिया भी जानता है, जरा सा सुख में सुखी जरा सा दुख में दुखी। यदि मनुष्य पढ़ा लिखा भगत साधक हो गया फिर भी आज तो बहुत सुखी छू, शू थो कि आज तो सवारे हूँ वेलो उठ्यो अने माला करी, अने वेलो उठ्यो माला करी जाम बाहर निकलो के તરત મને ઠાકોરજી નો જે ભરઘોડો નીકળતો હતો તેના દર્શન થયા. પણ પેલા ઠાકોરજી હતા ત્યારે થયા. 24 ઘંટા જીસકે દર્શન હો રહે હૈ, જીસકી સત્તા સે દર્શન હો રહે હૈ, મફતલાલ ઉસકા તો ખ્યાલ નહીં કરતા હૈ. ઓર વો મૂર્તિ કે દર્શન હુએ તો ઉસલી ઉસ દિન ખુશ હોતા હૈ, ઓર નહીં હુએ તો રંજ હોતા હૈ. તુમ એસા જીઓ કે જીસકો દેખો તો બસ ઈશ્વર હી દેખે. એસા ખાઓ કે જો ખાઓ વો પ્રસાદ હો જાય. એસા વિચારો કે જો વિચારો બ્રહ્મ વિચાર હો જાય. એક મંદિર મસ્જિદ મે હી ક્યા જાના, સારા વિશ્વ હી મંદિર મસ્જિદ હૈ. ઓમ ઓમ ઓમ. જીતના તુમ્હારે સિર પર કંધે પર બોજા અધિક હૈ, ઉતના ઉસકો હટાને કે લિયે પરિશ્રમ અધિક કરના પડેગા. એસે ઇસ જીવ કે ઉપર જીતની કલ્પનાઓ કા બોજા અધિક હૈ, ઉતના હી ઉસ કલ્પનાઓ કો હટાને કે લિયે ઉસકો તીવ્ર વિવેક કી જરૂરત પડેગી. વેદાંત કિસી કા શત્રુ નહીં, વેદાંત કિસી કી ક્રિટિસાઇઝ નહીં કરતા. વેદાંત ક્રિટિસાઇઝ તો નહીં કરતા, ફિર ભી વેદાંત બહુત માર્કે કી બાત કરતા હૈ. વેદાંત કહેતા કે સારા જગત કલ્પના હૈ, તુમ્હારા મિત્ર તુમ્હારા શત્રુ તો ક્યા, લેકિન તુમ્હારા દેહ ભાવ ઓર તુમ્હારા જાતીય ભાવ ભી તુમ્હારી કલ્પના હૈ. તુમ રાત્રિ કો સો જાતે ઓર કલ્પના તુમ્હારી દબ જાતી હૈ તો કુછ નહીં બચતા હૈ. સમાધિ મે કલ્પના ખો જાતી તો કુછ નહીં બચતા હૈ. મોત મે યે કલ્પના ઇસ દેહ કી હટ જાતી તો કુછ નહીં બચતા હૈ. એસે હી જીવન મે કલ્પનાઓ સે તુમ પાર હટો. દૃશ્ય રૂપી કલ્પના કા બોજા તુમ્હારે મસ્તક પર પડા હૈ, ઉસસે તુમ દબે ગયે હો. તો જીતના બોજા અધિક હૈ, ઉતના ઉસકો હટાને કે લિયે ભી જોર અધિક ચાહિયે. યહી કારણ હૈ કે ભૂતપૂર્વ જો કુછ થે સાક્ષાત્કારી પુરુષ, કિસી કો 12 સાલ લગે હૈ, કિસી કો 12 મહિને લગે હૈ, કિસી કો 12 દિન લગે હૈ, કિસી કો 12 ઘંટે લગે હૈ, કિસી કો 12 સેકન્ડ મે હો ગયા. એમએ મે એસા નહીં હોતા, એસએસસી પઢને મે સબકો 10 સાલ, બહોત બહોત તો 9 સાલ. કોઈ લોગ બોલતે કે મેરે કો સાક્ષાત્કાર હોગા ક્યા, કબ હોગા, કોઈ નહીં કહે સકતા. રામ આકર ભી નહીં કહે સકતે કબ હોગા. નહીં હોગા જરૂર. કબ હોગા કે જીતના તુમ કમ, જીતના કમ દબે હોગે ઓર પુરુષાર્થ જ્યાદા હોગા ઉતના જલ્દી હોગા, ઓર જીતના તુમ જ્યાદા દબે હો ઓર પુરુષાર્થ જીતને અંશ મે કમ હોગા ઉતના દેર સે હોગા. ઠીક હૈ. કબ આયેગા જરૂરી નહીં કે આસુદ શુદ્ધ કોઈ હોગા. તુમે તીજ કો ભી હો સકતા હૈ, ચોથ કો ભી હો સકતા હૈ, અભી ભી હો સકતા હૈ, કલ ભી હો સકતા હૈ, ઓર હજાર વર્ષ કે બાદ ભી હો સકતા હૈ. કિયે બિના તુમ રહોગે નહીં. લાખ જન્મ કે બાદ ભી તુમકો એક બાર સાક્ષાત્કાર કરના હી પડેગા, જખ માર કે હી કરના પડેગા. ઉસકે બિના તુમકો બેઠને નહીં દેગી પ્રકૃતિ, ઉસકે બિના તુમ્હારા મન તુમકો ચેન લેને નહીં દેગા. આજ કરો, મહિને કે બાદ કરો, સાલ કે બાદ કરો, 100 વર્ષ કે બાદ કરો, 100 જન્મ કે બાદ કરો, 100 જુગો કે બાદ કરો, લેકિન એ કામ કરના હી પડેગા. કે બાપુ નહીં કરીએ તો શું થશે. લ્યો અનુભવની વાત કહું, તમારા અનુભવની. નહીં કરો તો તમે આખો દિવસ શું કરો છો? સુખ માટે ફાંફા મારો છો ને? સવારથી સાંજ સુધી મને દુઃખ મળે એવું કોઈ કર્યું કોઈ દાડે? તુમકો દુઃખ મળે એસા તુમને કોઈ મહેનત કી? સુખ કે લી મહેનત કરતે હો, ઠીક હૈ ને? સુબહ સે શામ તક, જીવન સે મોત તક, ઓર મોત સે ફિર દૂસરે જીવન તક આપ સુખ કે લી દોડતે હૈ ઓર કર દોડતે હી રહેંગે. જબ તક પરમ સુખ કા સાક્ષાત્કાર નહીં હુઆ તબ તક તુમ્હારી દોડ ચાલુ રહેગી. સીધી બાત. સૂફી ફકીર સિંધી ને કહા, સિજ લથો સાંજી થી પખન વરાયા પખ, સૂર્ય અસ્ત હુઆ સંધ્યા હુઈ, પક્ષીઓને અપને પંખ ભરાય, ઘોંસલે કે તરફ ગયે, મજદૂર લોક અપને ઘર કે તરફ ગયે, સેઠ લોક અપને ઇમારતો કે તરફ ગયે, કોઈ તિનખે ચુગ કર ગયે, કોઈ કોડિયા કમા કર ગયે, કોઈ રૂપે કમા કર ગયે, કોઈ હીરે કમા કર ગયે. રાત હુઈ, કિસીને કોડી કમાઈ, કિસીને લાખ કમાયા, લેકિન સબ અપને ઘર કી ઓર ગયે. લેકિન પ્રભુ તુમ મુજે એસી પાંખ દેના કે મેં અપને ઘર કે આવા. सिजल थो सांझी थी पखिन वराया पख किन मेड़ा माणिक मोती किन मेड़ा कख साई दीजा पख त उडी थ्या उडड़ो अपने घर की ओर आऊं। कल्पनाओं के जगत में जो फैल गया हूं हे भगवान ऐसी पांख देना कि कल्पनाओं से हटकर मैं अपने स्वरूप की ओर आऊं। लोग तो रुपए पैसे लाख हजार कमाकर अपने घर की ओर आए, हम अपने स्वरूप की ओर आऊं ऐसी मुझ पर दया करना। तो जितना बोझा अधिक होता है उतना हटाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए बचपन में जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं, बचपन में जिनको संयम का रास्ता मिल जाता है, विवेक वैराग्य का, तो कल्पनाओं का जत्था कम होता है, उनको जल्दी ज्ञान हो जाता है। मदालसा के पुत्रों को छहों को ज्ञान हो गया, अलरक को थोड़ा जानबूझ के अज्ञानी रखा और बाद में उसको भी ज्ञान हो गया। तावीज खोलने मात्र से ज्ञान का रास्ता मिल गया, गोरखनाथ के पास पहुंच गया और ज्ञान हो गया अलरक मदालसा का पुत्र। क्यों? कि दृश्य की कल्पना उन बच्चों के चेहरे, उन बच्चों के मस्तक में पड़ती ही नहीं थी। जो बच्चों को जन्म देती तो माई लोली देती कि तू शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो नारायणो असी मोह निद्रा मदालसा वाचो। मदालसा ऐसा बोलती थी, बेटा तू मोह निद्रा छोड़ दे, शरीर में ममता छोड़ दे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू काल का भी काल है, ये जगत और ये शरीर तू नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो सारे ब्रह्मांड का आधार चैतन्य है। अब मेरे कुख से तू शरीर लेकर आया, अब शरीरों का अंत कर दे, अपनी महिमा में जग जा, ऐसा लोली देती थी। और अभी की माया लोली देती है, डायो छे पाटले बेसी नायो छे पाटलो खसी गयो भई हसी गयो बड़ो थींदो पेछा कमाइंदो मोटो थसे डॉक्टर थसे लोकोनो लोई चूसे बंगला बांधे। अनात्मा का अभ्यास पड़ गया है, कुसंस्कार पड़ गए हैं, जितने पड़ गए उतना अधिक बल करो तो वो दूर हो जाएगा। शुभ और अशुभ दोनों बल ही हैं, दो मल हैं। अशुभ वाला यदि कमजोर होगा तो शुभ जीत जाएगा, शुभ वाला यदि कमजोर होगा तो अशुभ जीत जाएगा। तो अविचार जोरदार होंगे तो तुम्हारे विचार दबा देगा, और विचार जोर होंगे तो अविचार से जो सुख दुख बाजता उसको दबा देगा। तो जिस समय तुम दुखी होते ना, समझ लेना कि अविचार जोर पकड़ गए और विचार कमजोर हो रहे हैं। और जिस समय सुख दुख की चोट नहीं होती तो समझ लेना कि इस समय विचार जोर पकड़ रहे हैं, अविचार ठंडे पड़ गए। जो एक बार तुम किसी को गिरा सकते तो दोबारा भी गिरा सकते, चौबारा भी गिरा सकते। एक बार तुम जीत गए ना, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में जरा सम रहने का, तो फिर आपको कुंजी हाथ लग जाएगी और बढ़ती 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 साक्षात्कार। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने छानबीन करते हुए जो भगवान को चाहते हैं साधु बनते हैं, अपनी मिलकत गुरु को अथवा समाज को लुटा दे, गुरु यदि त्यागी हैं तो समाज में लुटा दे गुरु की आज्ञा के अनुसार, और गुरु यदि मठधारी या आश्रमवासी या परोपकार के काम करते हैं तो सारी मिलकत गुरु को दे दे और खुद जाकर भिक्षा मांगे, और ऐसी जगह मांगे कि जहां परिचय न हो, जहां अनादर हो। अनादर हो उस समय देखे कि अनादर किसका हुआ, ये साधना के लिए किया जाता था। कोई रोटी की कमी नहीं होती, फकीरों का शिष्य हुआ और रोटी की कमी कैसे होगी उसको? एक बार ज्ञानी का दर्शन कर लिया, वो भूख के कारण कभी नहीं मरता। तो सतना उसको यमराज कभी टच, यमदूत कभी टच नहीं कर सकता ब्रह्मवेत्ता का शिष्य को, तो उसको फिर भूखामरी टच क्या करेगी? फिर भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसका राज्य था, ऐसा राजा भरतरी भिक्षा पात्र लेके मधुगिरी करते, लीलासा बापू मधुगिरी करते, हमने मधुगिरी करके जरा आजमा के देखा। ओम 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 जो कुछ सुना है उसको बारंबार विचारो। जो रुपया तुम्हारी सहाय नहीं कर सकता, मित्र सहाय नहीं कर सकता, पूरा राज्य और पूरा देश मिलकर जो तुम्हारी सहाय नहीं कर सकता वो ज्ञान तुम्हारी सहाय करेगा। पूरा देश पूरा राष्ट्र तुम्हारे फेवर में हो फिर भी वो जो नहीं दे सकता है वो ये सत्संग देता है। राष्ट्र तुम्हारी फेवर में मौत से नहीं छुड़ा सकता, बीमारी में अशांति से वो नहीं छुड़ा सकता, दवाइयां दे सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। ये विचार से तुमको शांति मिलेगी, विचार से तुम्हें परमात्मा की उपलब्धि होगी। राष्ट्र पूरा तुम्हारे फेवर में हो, परमात्मा नहीं दे सकता तुम।
इसीलिए कहते हैं कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। फकीर के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। ओम 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 ओम।